नमस्कार बच्चों, मेरा नाम प्रिया सिंह है और आज हम डिस्कस करेंगे आपकी किताब सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। बच्चों, हमने इस चैप्टर को बहुत बढ़िया से समझ लिया, पूरी रीडिंग कर ली और अब इस पार्ट में हम इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद अपनी किताब में दी हुई एक्सरसाइज को मन लगा करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं। तो आप खोलिए पेज नंबर 123, जिसमें लिखा है महत्वपूर्ण बिंदु और इसका पहला पॉइंट कहता है हमारे देश को 5 भौगोलिक विभागों में बांटा जाता है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, मध्यवर्ती विशाल मैदान, थार का मरुस्थल, दक्षिण का पठार तथा समुद्र तटीय मैदान व द्वीप समूह। तो बच्चों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे देश को हम 5 जियोग्राफिक डिविजन्स में डिवाइड करते हैं और इन सभी डिविजन्स को हमने बहुत बढ़िया से समझा है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश कौन कौन से स्टेट्स में है? तो बच्चों, ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का बिल्कुल एक्सट्रीम नॉर्दर्न एरिया, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और फिर नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनमें उत्तरी पर्वतीय प्रदेश फैले हुए हैं। इसके बाद हमने देखा मध्यवर्ती विशाल मैदान, तो वो हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में फैले हुए हैं। वैसे ही थार का जो मरुस्थल है वो केवल राजस्थान में है। इसके साथ साथ अगर दक्षिण के पठार की बात करें तो बच्चों, दक्षिण का पठार डेक्कन प्लेट्यू कहलाता है। एमपी यानी मध्य प्रदेश से शुरू होकर साउथ में तमिलनाडु को कवर करता है। वैसे ही समुद्र तटीय मैदान क्या होता है? तो समुद्र तटीय मैदान हम वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के क्षेत्रों को कहते हैं। इसके बाद द्वीप समूह हमने देखा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो ये हो गया हमारा एक क्विक सा रिविजन। इसके बाद बच्चों, सेकंड पॉइंट कहता है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में उपविभाजित किया जा सकता है, महान हिमालय, लघु हिमालय एवं उप हिमालय। इसका मतलब कि जो हमारे नॉर्थ में माउंटेनियस रीजन है हम उनको 3 डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं और हमने इन तीनों डिविजन्स को बहुत ध्यान से पढ़ा है, जिसको हम ग्रेटर हिमालय यानी महान हिमालय, लघु हिमालय और उप हिमालय यानी लेसर हिमालय और आउटर हिमालय के नाम से जानते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट कहता है विशाल मैदान उपजाऊ व समतल होने से सर्वाधिक घना बसा है, यानी कि हमारे देश की मैक्सिमम पॉपुलेशन विशाल मैदानों में रहती है, यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार। इसके बाद चौथा पॉइंट कहता है दक्षिण का पठार विपुल खनिज संपदा का भंडार है, यानी डेक्कन प्लेट्यू मिनरल्स का एक भंडार है, क्योंकि वहां पर जो सॉइल होती है बच्चों वो वॉल्केनो से बनती है, यानी वॉल्केनिक लावा जो होता है उससे फॉर्म होती है, जिसकी वजह से वहां की जो सॉइल है वो बहुत फर्टाइल होती है और वहां पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट लिखता है कि समुद्र तटीय मैदान 2 भागों में विभक्त हैं, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। इसका मतलब कि हमारे डेकन प्लेट्यूज के आजू बाजू में जो प्लेन रीजन है हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। इसके अलावा सिक्स पॉइंट कहता है द्वीप समूह, तटीय द्वीप, कांप मिट्टी के द्वीप, पथरीले द्वीप, दूरस्थ द्वीप, पर्वतीय व प्रवाल द्वीप, ये सभी द्वीप हमें याद रखने हैं। इसके बाद सेवेंथ पॉइंट कहता है राजस्थान 23 डिग्री 30 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तथा 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित भारत को देश का सबसे बड़ा राज्य है। इसका मतलब कि हमारे राजस्थान का लैटिट्यूड 23 डिग्री 30 से 30 डिग्री 12 नदन लैटिट्यूड है और 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 ईस्टर्न लैटिट्यूड पर लोकेटेड है और ये हमारी कंट्री का सबसे बड़ा राज्य है। इसके बाद लिखा है एट पॉइंट में राजस्थान के प्रमुख भौतिक विभाग पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश व दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है। यानी कि राजस्थान के कई डिविजन्स हैं, जिसमें से मेन है डेजर्ट वाला रीजन, अर्धशुष्क यानी सेमी ड्राई रीजन, अरावली रीजन, ईस्टर्न प्लेन रीजन एंड साउथ ईस्टर्न प्लेट्यूज का रीजन। तो ये सब बच्चों हमने बहुत बढ़िया से डिस्कस किया हुआ है काफी डिटेल में। नाइन्थ पॉइंट कहता है अरावली पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। बच्चों नाइन्थ पॉइंट को आप स्टार मार्क कीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन काफी टाइम पूछा जाता है कि अरावली पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो आपको याद होना चाहिए अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। और इसी के साथ हमारा डिस्कशन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समाप्त होता है और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपनी एक्सरसाइज पर, जिसमें से पहली एक्सरसाइज है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। बच्चों हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 124 पर, तो आप पेज नंबर 124 टर्न करिए। इसमें पहला जो प्रश्न है वो पूछता है भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा है अ कर्क रेखा, ब मध्य रेखा, स विषुवत रेखा, द मकर रेखा। तो बच्चों ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है और इसका जवाब आप सभी को अच्छे से आना चाहिए। तो भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा है कर्क रेखा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू पूछता है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश किसका भाग है। ऑप्शन अ अरावली का, ऑप्शन ब पामीर घाट का, ऑप्शन स आर्मेनिया घाट का, ऑप्शन द कैलाश पर्वत का। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हमारे पामीर घाट का हिस्सा है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर टू का सही जवाब होगा ऑप्शन ब। क्वेश्चन नंबर थ्री पूछता है भारत का सबसे घना बसा भौतिक विभाग है। ऑप्शन अ मध्यवर्ती विशाल मैदान, ऑप्शन ब थार मरुस्थल, ऑप्शन स दक्षिण पठार, ऑप्शन ड तीनों ही गलत हैं। तो बच्चों भारत का सबसे घना बसा यानी कि डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है मध्यवर्ती विशाल मैदान। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जहां पर विशाल मैदान पाए जाते हैं वहां पर अपनी रोजी रोटी चलाना आसान होता है। तो इसी वजह से ऑप्शन अ इसका सही जवाब होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 हमसे पूछता है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है। ऑप्शन अ अंडमान में, ऑप्शन ब निकोबार में, ऑप्शन स लक्षद्वीप में, ऑप्शन द मिनिकॉय में। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा निकोबार में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन है ऑप्शन ब। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान है। पहला ऑप्शन ब, दूसरा ऑप्शन स, तीसरा ऑप्शन द, पांचवा। तो बच्चों ये प्रश्न भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हमारे देश का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है। ऐसे तो विश्व का सबसे बड़ा देश है रशिया और अमेरिका भी, लेकिन हमारे कंट्री का भी कहीं ना कहीं नाम आता है, और इसी वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा रहती है। तो बच्चों क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे राजस्थान का भारत में स्थान है पहला, यह हमने काफी अच्छे से डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 6 पूछता है, राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो बच्चों एक मूवी आई थी, उस मूवी का नाम था भूमि, जिसमें संजय दत्त लीड रोल में थे, और उसमें एक बहुत अच्छा डायलॉग था। उस डायलॉग के बीच में एक जगह का नाम आता है, वो जगह है धौलपुर। वो डायलॉग था कि धौलपुर में एक कहावत मशहूर है। तो बच्चों ये वही धौलपुर है जो कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। तो अगर आपने भूमि मूवी देखी है तो आपको याद करने में काफी आसानी होगी कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला है ऑप्शन स धौलपुर। बच्चों कभी कभी मूवीज देखना भी लाभदायक होता है, यानी हेल्पफुल होता है, क्योंकि मूवीज के थ्रू भी हम किसी एक स्पेसिफिक रीजन के कल्चर, वहाँ के क्लाइमेट, वहाँ की वेदर कंडीशन, वहाँ के रहन सहन, खान पान, हर चीज को ध्यान से देख पाते हैं। खैर ये तो एक एक्स्ट्रा नॉलेज हो गई, अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पूछता है, नीलगिरी व हिमालय के मध्य सर्वोच्च चोटी है। ऑप्शन ए गुरु शिखर, ऑप्शन बी सेर, ऑप्शन स महाबलेश्वर, ऑप्शन द अचलगढ़। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गुरु शिखर, और ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। बच्चों इसके बाद शुरू होता है हमारी एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट, जो है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, यानी कि आपको इसमें बहुत छोटे सेंटेंस में अपना जवाब देना है। तो इसका पहला प्रश्न है, ढांड किसे कहते हैं। बच्चों इसका जवाब हमें पेज नंबर 118 पर मिलेगा। 118 पेज नंबर पर थर्ड पॉइंट थार का मरुस्थल नाम के पैराग्राफ के लास्ट से चौथी या पांचवी लाइन में लिखा है कि इन टिलों में मध्य वर्षा जल भर जाने से यहाँ अस्थाई झीलें बन जाती हैं, जिन्हें ढांड या रन कहते हैं। तो मैंने आपको पेज नंबर बता दिया, पैराग्राफ बता दिया, अब आप ढांड का जवाब ढूंढ करके अपने प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 पूछता है, भारत का सर्वाधिक घना बसा भूभाग कौन सा है। तो बच्चों भारत का सर्वाधिक घना बसा भूभाग हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स को कहते हैं। तो अगर आप ध्यान से पढ़े तो आपको पेज नंबर 117 पर मिलेगा कि उत्तर के मैदान में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मिलती है। तो आपके इस प्रश्न का जवाब होगा भारत का सर्वाधिक घना बसा भूभाग उत्तर का मैदान है। प्रश्न संख्या 3 पूछता है, भाभर कहाँ मिलते हैं। तो बच्चों हम जब भारत के लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि भाभर
हादर, बांगर और तराई प्रदेश हमें उत्तर के मैदान में मिलते हैं। तो बच्चों, आपको इसका जवाब मिलेगा पेज नंबर 117 में। और आपको सिंपल लिखना है कि भाबर प्रदेश हमें उत्तर के मैदान में मिलते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 हमारा कंप्लीट। प्रश्न संख्या 4 पूछता है, मर्ग कहाँ मिलते हैं? तो इस प्रश्न का हमें जवाब मिलेगा पेज नंबर 117 पर। बच्चों, अगर आपने ध्यान से मेरे इस लेसन को सुना होगा तो आपको जरूर पता होगा कि मर्ग हमें पहाड़ी क्षेत्रों में मिलते हैं, और एक बहुत फेमस नाम है गुलमर्ग, सोनमर्ग। तो इनसे ही पता चलता है कि कहीं ना कहीं मर्ग हमें हिमालयी प्रदेशों में मिलेंगे। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि मर्ग हमें लघु हिमालयी क्षेत्रों में मिलते हैं। और अगर आपको बारीकी से इस प्रश्न का जवाब चाहिए तो आप पेज नंबर 117 पर दिया गया पॉइंट नंबर 2 लघु हिमालय के पैराग्राफ को ध्यान से पढ़कर अपने इस प्रश्न का जवाब ढूंढ सकते हैं। इसके बाद बच्चों, हमारा अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 5 पूछता है, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये काफी सिंपल सा प्रश्न है और ये हमने राजस्थान वाले टॉपिक में ही कंप्लीट किया था। पेज नंबर 119 पर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में हमें राजस्थान के लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और इसके एरिया के बारे में जानकारी मिलती है। और इसी में हमें ये लिखा हुआ मिलता है कि राजस्थान का कुल क्षेत्र 342,239 वर्ग किलोमीटर है, जो कि हमारे देश भारत का 10.43% भाग है। तो आपको राजस्थान का कुल क्षेत्रफल पेज नंबर 119 पर मिल जाएगा। इसके बाद हमें अगले प्रश्न पर जाना चाहिए, जो है लघुत्तरात्मक प्रश्न। और लघुत्तरात्मक प्रश्न का प्रश्न संख्या 1 पूछता है, हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम बताइए। बच्चों, आपको प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये लघुत्तरात्मक प्रश्न की कैटेगरी में आता है, इसीलिए हमें प्रश्न के उत्तर की व्याख्या नहीं देनी है, जितना पूछा गया है केवल उतना ही बताएंगे। तो बच्चों, पेज नंबर 117 पर हमें दिया गया है कि हम हमारे हिमालय पर्वत को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है बृहद हिमालय, जिसकी प्रमुख चोटियां हैं गौरी शंकर यानी माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा तथा नंदा देवी। दूसरे हिमालय है लघु हिमालय, जिसकी प्रमुख श्रेणियां हैं पीर पंजाल व धौलाधर। तीसरा हिमालय है उप हिमालय, इसके अंदर जम्मू कश्मीर आता है, गिरी, मिसमी, डाफला पहाड़ियां आती हैं। तो आपको बृहद हिमालय, लघु हिमालय और उप हिमालय की व्याख्या पेज संख्या 117 यानी 117 पर मिल जाएगा। तो बच्चों, ये प्रश्न हमारा हो गया खत्म। अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 2 हमसे पूछता है, दक्षिण के पठार का महत्व बताइए। तो इसका जवाब मिलेगा हमको पेज नंबर 118 पर। इसमें लिखा है 5th पॉइंट पर, दक्षिणी पठार। अब आप इसको रीड करिए बच्चों, इसमें से अपने जवाब को ढूंढ करके अपनी नोटबुक पर लिखिए। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी व पश्चिमी घाट में क्या अंतर है? तो इसका जवाब भी हमको उसी पेज पर मिलेगा, यानी कि पेज नंबर 118 पर। इसमें हमें पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इन दोनों के बारे में जानकारी मिलती है। आप इन दोनों को बढ़िया से पढ़िए और फिर
अपने अकॉर्डिंग इसको कंपेयर करके एक बढ़िया सा चार्ट प्रिपेयर करिए, जिसमें एक तरफ पश्चिमी घाट और दूसरी तरफ पूर्वी घाट के स्पेसिफिक पॉइंट्स को नोट डाउन करिए, और फिर उसको कंपेयर करिए कि पश्चिमी घाट की लंबाई, पूर्वी घाट की लंबाई, पश्चिमी घाट की चौड़ाई, पूर्वी घाट की चौड़ाई, पश्चिमी घाट की तरफ बहने वाली नदियाँ, पूर्वी घाट की तरफ बहने वाली नदियाँ, या कौन सा द्वीप पश्चिमी घाट की तरफ आता है, कौन सा द्वीप पूर्वी घाट की तरफ आता है। इसके अलावा भी बच्चों आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे जिसको आप अपने आंसर में फ्रेम कर सकते हैं। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछता है, भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाह से बने हैं। तो बच्चों ये अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर प्रवाह की वजह से बहुत सारे द्वीपों का निर्माण होता है, और वो द्वीप समूह हैं अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पाम्बन, हेयर, पारिकुद व श्री हरिकोटा। और बच्चों इसका जवाब हमें मिलेगा पेज नंबर 119 पर। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछता है, पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश की विशेषताएं बताएं। तो बच्चों हमने राजस्थान के भी अलग अलग प्रदेशों को बढ़िया से पढ़ा है पेज नंबर 123 पर। जो हमें 5 प्रदेश दिए गए हैं उनमें से पहला जो प्रदेश है जिसको हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से जानते हैं, उसमें आपको इसकी सारी विशेषताएं पता चल जाएंगी। तो बच्चों आपको आपके प्रश्न का जवाब पेज नंबर 123 पर मिलेगा। उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का जवाब ढूंढने में सफल रहेंगे। इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ेंगे निबंधात्मक प्रश्नों की तरफ, जिसका पहला प्रश्न है, भारत को भौतिक विभागों में बांटिए, किसी एक का वर्णन करिए। तो बच्चों हमने इस चैप्टर के शुरुआत में ही अपने भारत को अलग अलग भागों में बांट दिया, यानी कि उसकी जो विशेषताएं हैं उसको भी समझा, और यहाँ पर जितनी विभिन्नताएं पाई जाती हैं उनकी डाइवर्सिटी के बेसिस पर 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, जो है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, थार का मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, समुद्र तटीय मैदान व द्वीप समूह। और बच्चों हमने इन 5 प्रदेशों को, 5 भागों को बहुत ध्यान से पढ़ा है और आपने बहुत ध्यान से सुना होगा। तो अभी आपको केवल ये करना है कि आप इनमें से किसी एक प्रदेश को बहुत बारीकी से पढ़िए, समझिए और उस पर एक निबंध लिखिए। मैं यहाँ पर आपको केवल पेज नंबर बताऊंगी, तो पेज नंबर 113 पर इस प्रश्न का जवाब शुरू होता है, और इस पर जो 5 पॉइंट्स दिए गए हैं इनमें से किसी भी एक पॉइंट पर निबंध लिखना कोई कठिन काम नहीं है, इसलिए आप इस प्रश्न को खुद सॉल्व करिएगा। इसके बाद बच्चों हमारा अगला प्रश्न यानी निबंधात्मक प्रश्नों का क्वेश्चन नंबर 2 पूछता है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का विस्तार से विवरण दीजिए। तो बच्चों पर्वतों के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है और मुझे पूरा यकीन है कि आपको पर्वत वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अभी आपको हमारे नॉर्दर्न हिमालयन रीजन जो है उसके बारे में बढ़िया से एक पैराग्राफ लिखना है। तो बच्चों इसका जवाब आपको मिलेगा पेज नंबर 113 पर, जिसमें
हमारे पहले पॉइंट उत्तरी पर्वतीय प्रदेशों में उत्तर के पर्वत प्रदेशों को बढ़िया से समझाया गया है कि यहाँ के पर्वतों की क्या लंबाई, क्या चौड़ाई या फिर कितने वर्ग में ये फैले हुए हैं, यहाँ पर मिट्टी कैसी बनती है, यहाँ के रास्ते कैसे हैं इत्यादि। तो इन सभी जानकारी को बच्चों आपको ब्रीफ तरीके से लिख करके आपके प्रश्न का जवाब देना है। उम्मीद है आप ये प्रश्न भी कर लेंगे। बच्चों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। मैं अभी आपको इस ऑडियो में सारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकती हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी उन सारे पैराग्राफ्स को बढ़िया से पढ़ चुके हैं। तो फिर से रिपीट करके अपना टाइम वेस्ट करना कहीं से भी फ्रूटफुल नहीं है। तो इससे बेटर है कि मैं आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स का पेज नंबर बता रही हूँ, पैराग्राफ बता दे रही हूँ। आपको केवल उस पैराग्राफ को बढ़िया से रीड करके उसमें से अपने उत्तर को छाटना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, जो लिखता है दक्षिण पठार के महत्व व विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो इसका मतलब हमारे भारत को हमने जब 5 भागों में विभक्त किया यानी 5 पार्ट्स में जब डिवाइड किया था तो उसमें बच्चों हमने पठारों के बारे में भी पढ़ा था। प्रायद्वीपीय पठार को हम अन्य 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और दक्षिणी पठार। दक्षिणी पठार को हम इंग्लिश में डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं और इसका जवाब आपको मिलेगा बच्चों पेज नंबर 118 के पॉइंट ई दक्षिणी पठार वाले पैराग्राफ में। तो आपको दक्षिणी पठार का ये पैराग्राफ ध्यान से पढ़ना है और इसकी विशेषताओं को केवल नोट डाउन करना है। इसके बाद बच्चों हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, जो पूछता है राजस्थान को भौतिक विभागों में बांटते हुए किसी एक का विस्तार से वर्णन करिए। इसका मतलब कि अब हमें राजस्थान के ऊपर प्रश्न पूछा गया है और हमने राजस्थान को भी 5 प्रदेशों में बांटा है, पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। अब बच्चों आपको इन 5 प्रदेशों में से कोई भी प्रदेश अगर अच्छा लगता हो उनमें से आप किसी एक प्रदेश के बारे में विस्तार से लिखिए, यानी कि हमने उन सभी प्रदेशों को काफी बारीकी से देखा है, समझा है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स उनमें फॉल करते हैं वो भी देखा है। तो आपको इस प्रश्न का जवाब देने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो आपको सिंपली पहले एक इंट्रोडक्शन देना है कि राजस्थान को भौतिक रूप से हम 5 भागों में बांट सकते हैं, वो 5 रूप आपको आपकी पेज संख्या 123 पर मिल जाएगा और फिर उसके बाद इन 5 में से किसी एक प्रदेश पर आप डिटेल में यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसी के साथ हमारा निबंधात्मक प्रश्न भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आएगा हमारा आंकिक यानी कि मैपिंग का क्वेश्चन। तो आंकिक में प्रश्न संख्या 1, भारत के मानचित्र में प्रमुख भौतिक विभाग दिखाएं। बच्चों ये मैप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब आपको केवल ये करना है कि पेज नंबर 116 पर एक बार फिर से जाइए। इसमें 5 जो छोटे छोटे सांकेतिक बॉक्स दिखाए गए हैं इन बॉक्सेस को समझिए और अपने मैप पर इसको कॉपी करने की कोशिश करिए और फिर इसको बच्चों आपको समझ करके बढ़िया से डिस्क्राइब भी करिए कि कौन कौन से प्रदेश किस किस स्पेशलिटी को शो करते हैं। और इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 2, भारत के प्रमुख ऊंची पर्वत चोटियों को मानचित्र में दर्शाएं। तो बच्चों, जब आप भारत की ऊंची चोटियों के बारे में पढ़ रहे थे या हिमालय वाला टॉपिक कवर कर रहे थे, तो आपने देखा था पर्वत चोटियों को। अब आपको उन पर्वत चोटियों को अपने मैप में शो करना है। इस काम को कंप्लीट करने के लिए आप अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, अपने भाई बहन या किसी परिजन की हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप इंटरनेट के माध्यम से खुद भी हमारे भारत की ऊंची पर्वत चोटियों को मानचित्र में दर्शा सकते हैं। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 3 और आखिरी हमसे पूछता है, राजस्थान के मानचित्र में इसके भौतिक विभाग बनाइए। तो बच्चों, ये वाला मैप भी हमने काफी अच्छे से डिस्कस किया था। पेज नंबर 122 पर जो राजस्थान का भौतिक प्रदेशों का मैप दिया है, आपको सिंपली उसको समझ करके मैप पर उतारना है। और इससे बच्चों हम देखेंगे कि हम अपने भारत को भी अलग अलग भौतिक प्रदेशों में डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही राजस्थान को भी अलग अलग भौतिक प्रदेशों में डिवाइड कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारे आज की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। और इसी एक्सरसाइज के साथ हमने फिनिश कर दिया अपना चैप्टर नंबर 12। चलिए बच्चों, आप अपना ध्यान रखिए, सारे क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करिए। धन्यवाद।